जाने क्या देखा मुझ में, मुझे प्यार कर लिया मेरे लाडले, कहा मेरे लाडले, कहा आंचल में भर लिया।
ओम शांति। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है और हम देख रहे हैं कि विश्व में और सब जगह परिवर्तन आता जा रहा है, सबसे बड़ा अभी जो समस्या है व्यक्ति के सामने, जो परिवर्तन चल रहा है, उसको कैसे ठीक से मैनेज करें। मेरे ख्याल से ये एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट भी है परिवारों में, कॉरपोरेट सेक्टर्स में, कि जो परिवर्तन हो रहा है, मैनेजिंग द चेंज, कैसे, हाउ टू मैनेज इट, कैसे इसको ठीक से मैनेज करें। और हम देख रहे हैं कि ब्राह्मण जगत में भी ये परिवर्तन आता जा रहा है। जो पुराने भाई बहन होंगे जिन्होंने 30 साल पहले 35 साल पहले यज्ञ को देखा होगा, और जिन्होंने अभी यज्ञ को देखा, और जो वो भाई बहन यज्ञ को देख रहे हैं, एक परिवर्तन की लहर चलती जा रही है। बाबा का भी जो इन्फॉर्मेशन है, ज्ञान है, उसको भी अगर हम ठीक से समझ लेते हैं तो ये परिवर्तन को ठीक से समझ सकते हैं और उसका सामना ठीक रीति से कर सकते हैं। परमात्मा ने सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दिया, ज्ञान दिया, नॉलेज दिया ब्रह्मा बाबा को। ब्रह्मा बाबा ने वो ज्ञान अपने में स्टॉक किया और उस स्टॉक को चिंतन किया, सूक्ष्म बनाया, मंथन किया, चिंतन किया और उस ज्ञान को फिर दिया, बांटा, जिससे कि एक ग्रुप तैयार हुआ। वो ग्रुप अपने आप में शक्तिशाली हो गया और उस ग्रुप ने भी अपना अपना मंथन किया और उस ग्रुप ने फिर दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप बनाया। इस तरीके से ब्रह्मा कुमारी संस्था का एक्सपांशन होता गया और अभी हम देख रहे हैं कि ये एक्सपांशन अपने समय के अनुसार लास्ट चक्र के लास्ट पार्ट में है। इसीलिए बाबा बार बार यूज कर रहा है अचानक और समय, ये दोनों का बार बार बाबा यूज कर रहा है और उसके लिए बाबा ने पहले से ही तैयारी शुरू करवा दी थी। जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है वो इसलिए दी जा रही है कि अंत के समय में हम अपने को ठीक रीति से तैयार करके उस परिस्थिति का सामना कर सके। और जितना जो अभ्यास करता है उतना वो अपने को तैयार करता है। इस ज्ञान में मुख्य बात यही है कि हर व्यक्ति को अपनी तैयारी खुद करना है, केवल दूसरे लोग उसको सपोर्ट कर सकते हैं, पर तैयारी हर व्यक्ति को, हर आत्मा को अपनी खुद की करनी है। इसीलिए अगर हम देखें बाबा के ज्ञान में, शुरू में बाबा सपोर्ट करता है। अगर हर व्यक्ति, हर आत्मा अपने आप में पूछे कि शुरू में ज्ञान में बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छे अनुभव होते थे, धीरे धीरे जैसे जैसे समय निकलता है वो अनुभव कम होते जाते हैं। जो शुरू का खुशी का पीरियड है, जिसको कह लें हनीमून पीरियड, जैसे ही वो पूरा होता है एक दूसरा फेस चालू होता है। उस दूसरे फेस में हर आत्मा को अपनी तैयारी खुद की करनी पड़ती है। बाबा अपना फाउंडेशन हटा देता है, अब वो कहता है तू अपनी तैयारी खुद कर। इसलिए करा रहा है कि अंत के समय में हर आत्मा को अपना कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तैयार रखना पड़ेगा। जो लास्ट की मुरली चली उस मुरली में भी बाबा ने, आठवीं मुरली, उस मुरली में बाबा ने बहुत पावरफुल मुरली चलाई, बहुत कम समय था और बहुत, मैं कहूंगा एक वन ऑफ द पावरफुल मुरली मैंने भी सुनी। इस मुरली में बाबा ने बहुत कुछ वेरी क्लियर कर दिया कि क्या होगा और क्या करना है। अब इसके बाद हमें अपनी तैयारी खुद की करनी है। इसमें बाबा ने कहा, पहला, अपना इंट्यूशन यानी अपना पकड़ने की शक्ति, वाइब्रेशन को कैच करने की शक्ति, ठीक वर्ड होगा, कैच करने की शक्ति बहुत अच्छी चाहिए। क्योंकि जब तक हमारा कैचिंग पावर अच्छा नहीं होगा तो हम वाइब्रेशन कैच नहीं कर पाएंगे, और वाइब्रेशन कैच नहीं कर पाएंगे तो हमारा डिसीशन पावर ठीक नहीं होगा। और मेरे ख्याल से अभी सबसे बड़ी जरूरत है, जितने भी प्रॉब्लम मेरे सामने भाई बहन लेके आते हैं उसका मुख्य एक यही रहता है, डिसीशन पावर। मैं क्या करूं, ये करूं कि ये करूं। इसीलिए व्यक्ति की अपनी जिंदगी ज्यादातर कंफ्यूज और कंफ्लिक्ट में चली जाती है। कभी कभी हम ब्राह्मण भी ठीक से ज्ञान को न समझने के कारण अपने अपने कंफ्यूजन और कंफ्लिक्ट पैदा करके संगम को खत्म कर देते हैं। तो पहला चाहिए, कैचिंग पावर अच्छा चाहिए। कैचिंग पावर और डिसीशन ये अंत के मुख्य हथियार होंगे। ये हमारे ठीक होंगे तो हम अपने को डिफेंस कर सकेंगे, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकेंगे। बाकी कुछ प्रोटेक्शन काम में नहीं आएगा, जो बाबा ने इस मुरली में कहा कि कोई भी साधन काम में नहीं आएगा, अपनी साधना ही केवल काम में आएगी। ये एक बेसलाइन है, इसको हम फाइट नहीं कर सकते। ये हमारा बेसलाइन है कि मेरी जितनी अपनी साधना अच्छी होगी मैं उस समय अपने डिसीशन ठीक कर सकूंगा। अब उसके लिए चाहिए, अगर हमें डिसीशन ठीक चाहिए, कैचिंग पावर ठीक चाहिए, तो क्या करना है? अब आप बताएं क्या करना है, और एकाग्रता की शक्ति कहां से आएगी? बुद्धि की लाइन क्लियर होना चाहिए, और वेरी गुड, दृढ़ संकल्प होना चाहिए, वेस्ट थॉट्स कम होना चाहिए, गुड, और क्लीन बुद्धि, प्लेन इंटेलेक्ट। जितना व्यक्ति क्लियर होगा, क्लीन होगा, उतना ही उसका कैचिंग पावर अच्छा होगा। पूरे लाइफ में अगर हम देखें तीन चीजें ही गड़बड़ करती है। बाबा के ज्ञान के अनुसार हम देखें, एनालिसिस करें, तीन चीजें ही प्रॉब्लम लाती है, और बाबा ने मुरलियों में क्लियर किया। पहला, विघ्न आने का कारण क्या है? कोई भी समस्या या विघ्न आने का कारण क्या है? और बाबा की मुरली के अनुसार मैंपन भी ठीक है, पर उसके अंदर मन, उसका भी कारण क्या है? मन की हलचल, मन भटकाता है, मन फ्यूचर में ले जाता है, मन पास्ट में ले जाता है। व्यक्ति कब डरता है? व्यक्ति के अंदर, शरीर के अंदर कब घबराहट आती है, डर कब पैदा होता है? क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु आत्मा का है उसका अपना डर। और डर का भी कारण क्या होता है, डर का भी कारण क्या होता है, डर का भी कारण होता है उसकी अपनी खुद की कमजोरी, उसके खुद के कमजोर संकल्प। जिस व्यक्ति में जितने ज्यादा कमजोर संकल्प चलते हैं, मन उसको उतना डराता है। पूरा खेल ये विजय का और हार का, विक्ट्री और लॉस का, विन और लूज का डर है, फियर है। और हम सभी जानते हैं कि 63 जन्मों के अलग अलग तरह के संकल्प और संस्कार हमारे अंदर गए हुए हैं, रिकॉर्डेड हैं। ये 63 जन्मों का मन जब खुल जाता है तभी व्यक्ति डरता है। अब इस डराने वाले मन को हम कैसे कम करें, उसके असर को, उसके इफेक्ट को कैसे कम करें, यही पूरा हमारा ज्ञान है। परमात्मा का पूरा ज्ञान इसी पर आधारित है कि आप अपने अंदर चलने वाली मन की हलचल को कम करो। दूसरा, मन भगाता है, हलचल में लाता है, बुद्धि क्या करती है, भटकाती है, बुद्धि भटकाती है। और संस्कार क्या करता है, बार बार वो पुरानी स्मृतियां खोल देता है जो हमारे अंदर है, और न चाहते हुए भी हम डर जाते हैं। और जितना व्यक्ति डरता है उसका स्वास्थ्य, उसकी हेल्थ उतनी खराब होती जाती है। बीमारी का मुख्य कारण भी यही रहता है। पहला, कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने आप से डरा हुआ है, घबराया हुआ है, या डराया हुआ मन उसका बार बार खुल जा रहा है, 63 जन्मों वाला मन, या वो व्यक्ति ने कुछ न कुछ लाइफ में पकड़ा हुआ है, वो किसी चीज को पकड़कर उसके ऊपर जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा है, वो किसी न किसी चीज पर आधारित है, डिपेंडेंट है। और जो व्यक्ति जितना डिपेंडेंट होता है, आधारित होता है, उतना वो डरता है। और जितना डरता है हमारे डर वाले हार्मोन बॉडी में ज्यादा पैदा होते जाते हैं। जितना हम खुद से डरते हैं उतना डर वाले केमिकल्स हार्मोन्स बॉडी में रिलीज होते हैं, और उसके कारण हमारे शरीर की प्रतिरोधक शक्ति कमजोर हो जाती है। और आज 21वीं सदी का मुख्य प्रॉब्लम, मुख्य बीमारी कुछ नहीं है, सबसे मुख्य बीमारी है आज व्यक्ति की प्रतिरोधक शक्ति, रेजिस्टेंस पावर कमजोर हो गया है। और इसके कारण तरह तरह के वायरस, बैक्टीरिया किसी भी समय हमला कर देते हैं। हमेशा सुनते रहते हैं आज ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, क्योंकि जो बैक्टीरिया और वायरसेस हैं उनने भी अपने को चेंज कर दिया है, म्यूटेशन कर दिया है। इसके कारण नॉर्मल एंटीबायोटिक काम ही नहीं करती, और जब डॉक्टर हेवी एंटीबायोटिक देता है तो और रेजिस्टेंस पावर कमजोर हो जाता है और नई बीमारी पैदा हो जाती है। इसीलिए जरूरी है कि हम अपने को ठीक रखें। संगम की सबसे बड़ी गिफ्ट अगर भगवान ने हमें दी है वो है हमारा खुद का मन और शरीर स्वस्थ रहे। अगर मन और शरीर स्वस्थ हैं तो हम कुछ भी सेवा कर सकते हैं, नहीं तो सेवा में सबसे बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन, बाधा अपना खुद का शरीर ही बनता है। दूसरा कारण कभी कभी ये देखा गया, हम लोग अपना बैलेंस खो देते हैं। कभी कभी ज्ञान में आने के बाद ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं और ओवर एक्साइटेशन के कारण हमारी बॉडी की एड्रिनल ग्लैंड एक्साइटेड हो जाती है। ये क्लियर समझ लें कि जो मन में होता है वो शरीर में होता है। ये एक मैं आपको बिलियन डॉलर स्टेटमेंट दे दूं जो किसी भी किताब में नहीं मिलेगा, शरीर कुछ नहीं है, शरीर मन का प्रोडक्ट है। बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ द माइंड। जो शरीर में हो रहा है वो मेरे मन की उपज है, पैदावार है। चाहे मेरी ब्लड शुगर, चाहे मेरा कोलेस्ट्रॉल, चाहे मेरा ब्लड शुगर जो हिल रहे हैं, फ्लक्चुएट हो रहे हैं, उसका कारण मैं खुद हूं। 80-90%, 10% चाहे उसका जेनेटिक बैकग्राउंड होगा, बाकी 90% मैं खुद हूं। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। एक व्यक्ति, हस्बैंड वाइफ को कुछ प्रॉब्लम था, उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, सब कुछ ठीक निकला, पर डॉक्टर ने देखा कि ये व्यक्ति शेयर मार्केट में काम करता है और जब कभी भी शेयर मार्केट ऊपर होता था नीचे होता था तो उसके बॉडी के केमिकल्स भी ऊपर होते थे नीचे होते थे। तो उस डॉक्टर ने उस दोनों को कहा, आप 3 महीने के लिए कहीं और चले जाएं, छुट्टी लें। उन दोनों ने छुट्टी ली और जो प्रॉब्लम उनका था वो सॉल्व हो गया। जैसे ही उस सिचुएशन से दूर हुए, माइंड जो ऊपर नीचे हो रहा था उसका होना बंद हो गया और बॉडी के केमिकल्स ठीक हो गए। तो जो शरीर में हो रहा है वो मैं खुद हूं। और उसका जो मैंने मेन रीजन ये बताया कि कहीं ना कहीं वो आत्मा किसी चीज को पकड़कर अपना जीवन बिताना चाहती है या चाहता है। इसीलिए मन बुद्धि संस्कार के गेम में सबसे पहले हमें मन को ठीक करना है। अब मन को कैसे ठीक करें? मन क्या करता है? आगे ले जाता है, पीछे ले जाता है। पूरा प्रॉब्लम मनुष्य जीवन का क्या है कि मन वर्तमान में नहीं रहता, प्रेजेंट में नहीं रहता, वो आगे पीछे भागता रहता है। पीछे देखो तो डर लगता है, आगे देखो तो डर लगता है। इस समय मैं यहां हूं वो ठीक नहीं कर पाता। और मन को ठीक करना है तो मन को हमेशा एक बच्चे की तरह ट्रीट करना पड़ता है। मन को हमेशा एश्योरेंस देना पड़ता है, एश्योरेंस का हिंदी होगा आश्वासन देना पड़ता है। क्या आश्वासन देना पड़ता है? हे मन, तू इस समय ठीक है, सब कुछ ठीक है, मैं इस समय वर्तमान में ठीक हूं। चलो हम लोग भी एक्सरसाइज करते हैं, मन को वर्तमान में लाएंगे, क्योंकि बाबा ने सब मुरलियों में कहा अब समय आ गया है अनुभव को बढ़ाओ, अनुभव की अथॉरिटी बनो। जो जितना अनुभव की अथॉरिटी बनेगा वो ही आने वाला मैच जीतेगा। ये दूसरा बिलियन डॉलर बेसलाइन स्टेटमेंट दे रहा हूं, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। जिसका जितना अनुभव अच्छा होगा, ज्ञान को जिसने जितना अपने में मंथन किया होगा, चलाया होगा, वो इतना सॉलिड निकलेगा। जिसने ज्ञान को केवल सुना है, ओवर एक्साइटेड है, इमोशनल है, मैच हारेगा। और ज्यादातर मैंने देखा हमारे भाई बहन क्यों मैच हारते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सेंसिटिव नेचर बहुत है। और अभी मैं देख रहा हूं 21वीं सदी का मेजर इश्यू होता जा रहा है, आत्माएं सेंसिटिव होती जा रही हैं। मैं कहूं सेंसिटिव नहीं, ओवर सेंसिटिव होती जा रही हैं। इतनी सेंसिटिव होती जा रही हैं कि अब किसी को भी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि सेंसिटिव जनरेशन है। और जितना व्यक्ति सेंसिटिव होता है, नर्वस सिस्टम उतना सेंसिटिव होता है। और ये जितना नर्वस सिस्टम सेंसिटिव होता है, उतना हार्ट बीट तेजी से चलती है। अभी 70 थी, अभी 80 थी, कुछ हो गया, किसी ने कुछ कह दिया, 120 तक पहुंच गई और हार्ट अटैक हो गया। दूसरा प्रॉब्लम इस सेंसिटिव के कारण डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। अब हम फिर से प्रैक्टिस करेंगे, फिर से आत्म शक्ति को केंद्रित करके उस शक्ति का अनुभव करेंगे।
प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए।
तो मन को जितना हम एश्योरेंस देते हैं, आश्वासन देते हैं, मन हमारे वर्तमान में आ जाता है। जब कभी भी मन भगाए, डराए, घबराहट पैदा हो, उस समय मन को कहिए, हे मन, मैं इस समय ठीक हूं, मेरे साथ जो हो रहा है सब कुछ ठीक है। जितना मन को एश्योरेंस देंगे, उतना वर्तमान में मन आ जाएगा। घबराहट, फियर, डर, एंजाइटी नॉर्मल है। हर व्यक्ति को अपने अपने लेवल पर ये होता है। इससे हम विचलित ना हो, जब कभी भी ये चीजें आए उसी समय खुद को एश्योरेंस दो। उस समय कोई ना कोई ज्ञान का पॉइंट को रिवाइज करें और रियलाइज करें। मेरे को हमेशा ये दो वर्ड्स बड़े अच्छे लगते हैं, रिवाइज एंड रियलाइज। और बाबा की आठ मुरली देखें तो आठों मुरली में बाबा ने टच किया है अनुभव, एक्सपीरियंस। हर गुण का, हर शक्ति का रिसर्च करें, खुद की लेबोरेटरी में बैठकर जब कभी समय मिले उस अंतर्मुखता की गुफा में बैठकर खुद को खुद से बात करें, पॉजिटिव डायलॉग करें। मन और बुद्धि का डायलॉग चलता रहता है। जितना मन और बुद्धि का डायलॉग अच्छा होता है, बात अच्छी होती है, कम्युनिकेशन अच्छा होता है, उतना दृढ़ता आती जाती है। तो जब समय मिले रियलाइज, रिवाइज और रियलाइज। दूसरा बुद्धि, इंटेलेक्ट। बुद्धि को हमें दिव्य बनाना है, डिवाइन बनाना है। पूरा खेल अगर मन हलचल में भी लाता है, अगर बुद्धि अच्छी होती है, दिव्य होती है, मन और संस्कार को कंट्रोल कर लेती है। ब्रेक लगाने का काम बुद्धि का होता है। किसी भी घटना में अगर कुछ होता है, अगर बुद्धि ठीक से काम करती तो वो घटना को रोक देती है। और हम देखते हैं कि पिछले एक साल के पेपर जितने भी मैंने पढ़े, न्यूज़पेपर, जो भी घटनाएं हुई उसका कारण था बुद्धि की कमजोरी। अभी वर्तमान में मैच में बार बार खिलाड़ी लोग कह रहे हैं कि सामने वाले हमें उत्तेजित करते हैं, प्रवोक करते हैं, और इसलिए प्रवोक करते हैं कि हम कुछ बोल दें, और अगर बोल दें तो उनको मैच से फाइन किया जाता है और हटाया जाता है। अगर न्यूज़पेपर में पढ़ो, बार बार वो लोग यही कह रहे हैं कि सामने वाले प्रवोक करते हैं। अब आप देखेंगे इस पूरे चक्र में हर आत्मा का हर एक से पाठ है, और पर्टिकुलरली हम सभी ज्ञानी आत्माओं का आपस में पाठ है। इसीलिए इस ज्ञान में हम सब एक साथ आए हैं, और हम सभी के पेपर्स बाहर वालों के बजाय अंदर से ज्यादा चलते हैं। मेजॉरिटी टाइम भाई बहन कहते हैं, कोई बाहर वाला कुछ कहता है इतना असर नहीं आता, पर जब कोई अंदर वाला बोलता है, ज्ञानी कहता है, तब फीलिंग आ जाती है। फीलिंग आना भी एक बीमारी है। जैसे मैंने कहा, फीलिंग, सेंसिटिविटी, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। इसीलिए फ्लू की बीमारी बहुत ज्यादा आती है आजकल। फीलिंग, फ्लू। फीलिंग वाले का रेजिस्टेंस पावर धीरे धीरे कम हो जाता है। फीलिंग आना भी कमजोरी की निशानी है, चाहे बाहर वाला कहे चाहे अंदर वाला कहे। इसीलिए बुद्धि को मंथन की आदत डालिए, चिंतन की आदत डालिए। जब कभी समय मिले एक पॉइंट को लेकर, एक शक्ति को लेकर, एक गुण को लेकर उसका चिंतन करिए। इतना अच्छा चिंतन हो कि वो गुण, वो शक्ति मेरे स्टॉक में जमा हो जाए, और जब कभी भी इसकी जरूरत पड़े वो स्टॉक में से निकल के आ जाए। ज्ञान सभी के पास है, पॉइंट्स सबके पास हैं, पर इम्प्लीमेंटेशन कमजोर है। पूरा मैच का हार और जीत इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर है। प्लानिंग बहुत अच्छी कर ली, पर उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया तो मैनेजमेंट में भी फेल्योर होता है। हमारे ज्ञान में भी जो जितना उसका यूज करता है उतना वो शक्तिशाली होता है। इस ज्ञान के खेल में बाबा ने बार बार कहा, यूज करो। यूज वो ही कर पाएगा जिसने अनुभव किया है, चिंतन किया है, जिसने अपने स्टॉक का चेकिंग किया है। जिसको यही नहीं मालूम मेरे स्टॉक में क्या है, वो समय पर क्या यूज करेगा। तो फिर से हम देखते हैं अपना स्टॉक। एक्सरसाइज बैठे बैठे करते हैं, दोनों हाथों को ऊपर करें, दो बार ताली लेफ्ट में, तीन बार इधर। अब अपने स्टॉक में जो भी खाली है, वेस्ट है, उसको क्या करना है, निकाल देना है। वेस्ट थॉट्स क्या करते हैं, भारी करते हैं। गाना प्ले करेंगे, सब सौंप दो। तो क्या करेंगे हम अभी, अपनी कमजोरियों को, डर को, घबराहट को, वेस्ट थॉट्स को सौंपेंगे। अपने इसके अंदर नहीं रखना है, इसको सौंप देना है। सांस लीजिए और छोड़िए, सांस लीजिए और छोड़िए। प्रकृति का कितना अच्छा नियम है, जो सांस आने वाली है, जाने वाली है, उसको मैं रोक नहीं सकता। तो मैं क्यों डरूं, किसी भी चीज को क्यों रोकूं? जो चीज मेरे पास आई है वो जाएगी। अभी हम छोड़ते हैं, छोड़ते जाना। जाने दें कोई भी घबराहट, डर, मैं अपने स्टॉक से निकाल रहा हूं। जब सोप देते हैं तो बिल्कुल लाइट बन जाते हैं। तीसरा सीक्रेट इस गेम का जो बाबा ने बताया, नष्ट मोवा स्मृति लब्धा। अपनी विशेषता से भी मोह नहीं। नष्ट मोवा का अर्थ है केवल मोह नहीं, पांच विकार नहीं, पर मेरी खुद की विशेषता से भी लगाव नहीं। मैं किसी के प्रभाव में न आऊं। जो एक और व्यक्ति को मैच हराता है वो है, हम किसी न किसी के प्रभाव में आ जाते हैं, इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, इफेक्ट में आ जाते हैं। इस मैच में हमें किसी के प्रभाव में न आना है, न उसकी विशेषता से भी लगाव हो, खुद की विशेषता से भी लगाव ना हो। इसीलिए कहा गया मैंपन सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। इस मैंपन के लगाव से भी मुक्त, तभी हम कहेंगे नष्ट मोवा स्मृति लब्धा। मैं कुछ नहीं हूं, वो मेरे द्वारा मैच खिला रहा है। एक व्यक्ति स्वर्ग में गया, स्वर्ग का दरवाजा खटखटाया, भगवान ने पूछा कौन है, उसने बोला मैं ये हूं, मैं मिस्टर सो एंड सो हूं, डायरेक्टर इस कंपनी का। दरवाजा खुला नहीं। फिर एक साल बाद गया, स्वर्ग का दरवाजा खटखटाया, फिर उसने बोला कौन है, अंदर से आवाज आई, उसने बोला मैं ये हूं, दरवाजा खुला नहीं। तीसरी बार उसको समझ में आया, शायद ज्ञान लेके गया होगा यहां से, फिर गया, बोला तू ही तू है, दरवाजा खुल गया, तू ही तू है, दरवाजा खुल गया। पूरा सीक्रेट क्या रहा कि वो मेरे द्वारा खेल खिला रहा है, मैं एक ट्रस्टी के समान खेल को खेल रहा हूं, तो मेरी विशेषता का भी लगाव नहीं। पूरे प्रॉब्लम्स की जड़, झगड़ों की जड़, कन्फ्लिक्ट की जड़, व्यक्ति का अपना ईगो रहता है, और ज्यादातर प्रॉब्लम्स सबके अपने अपने ईगो जब टकराते हैं उसी से प्रॉब्लम आते हैं। ईगो खत्म हो जाए तो प्रॉब्लम कुछ नहीं रहे, वही स्वर्ग है। स्वर्ग को मुझे अभी प्रेजेंट में लाना है। तीसरा जो संस्कार है, मन बोल दिया, बुद्धि बोल दिया, संस्कार, मेरे इस समय अनादि और आदि संस्कार इमर्ज रहे, हमेशा मेरी चेकिंग रहे कि मेरा वर्तमान का संस्कार अनादि या आदि है। जितना मेरा वर्तमान में अनादि आदि इमर्ज होगा उतना मैं मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कर सकूंगा। जो मेजर मिस्टेक होती है, लोग समझते हैं स्वर्ग आएगा, स्वर्ग आने वाला है। स्वर्ग हर आत्मा का अपना अभी रहता है। अगर मैं अभी अपना स्वर्ग क्रिएट नहीं कर सकता तो फ्यूचर का स्वर्ग मैं नहीं जाऊंगा। इस समय मेरे संस्कार अगर अनादि और आदि नहीं है तो मेरा वहां भी जो रोल रहेगा कमजोर रोल रहेगा। इस समय मेरा राजा का संस्कार रहेगा तो उस समय भी मेरा राजा का संस्कार रहेगा। इस समय मैं राजा के संस्कार इमर्ज नहीं करता हूं तो उस समय भी मैं राजा के संस्कार नहीं रहेंगे। राजा के संस्कार यानी मेरी पांच कर्म इंद्रियों के ऊपर मेरा कंट्रोल, रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर, और उसमें सबसे बड़ा खेल है राजा का। आप बताइए कौन सा संस्कार राजा का रहेगा। जो अभी कुछ वरदान भी चल रहे हैं 3-4 दिन से, बेहद हद को बेहद में समा देना, सारा विश्व मेरा है, विश्व मेरे में है, मैं कोई पर्टिकुलर पार्ट का व्यक्ति नहीं हूं, आत्मा नहीं हूं, मैं पूरे विश्व का हूं, और पूरे विश्व का वही होगा जो रोज पूरे विश्व को पालना देता है। इसलिए बाबा ने 8वीं मुरली में कहा साकाश देने की सेवा करो, वाइब्रेशन देने की सेवा करो। बाकी सब सेवाएं ठीक है जो हम करते हैं, पर अब समय के अनुसार व्यक्ति को वाइब्रेशन चाहिए। आत्माओं में ताकत खत्म हो गई है। कई बार कई भाई बहन आते हैं बाहर वाले भी, उनको जब कहा जाता है पॉजिटिव थिंकिंग करो, पॉजिटिव थिंकिंग करो, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी बोल देते हैं, बहुत हमारे लिए इजी रहता, पॉजिटिव थिंकिंग करो, पॉजिटिव थिंकिंग करो, तो वो लोग कहते हैं सर कहां से करें पॉजिटिव थिंकिंग, आप हमारे लिए सोचो, मैं तो नहीं सोच सकता। अब ऐसा समय आ गया है, कहना बहुत इजी है पॉजिटिव थिंकिंग करो, पर जब खुद के ऊपर आता है तो व्यक्ति नहीं कर पाता। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ साथ पावरफुल थिंकिंग भी चाहिए। जब तक हमारे वाइब्रेशन स्ट्रांग नहीं है तो सामने वाला कुछ नहीं कर सकता। इसलिए बाबा ने कहा शक्तियों को पंप करो, कभी कभी जोक में मैं हमेशा यही कहता हूं, अभी 7 दिन के कोर्स के बजाय फोर्स का कोर्स करो, 1 सेकंड का कोर्स करो। इतना भी अभी समय नहीं है, आत्माओं में शक्ति नहीं है कि उसको आप पूरा म्यूजियम समझाओगे, ये थक जाता है। क्या हुआ, कुछ समझ याद ही नहीं रहा। अब क्या चाहिए, पंप लगाने पड़ेंगे। कौन से पंप, पेट्रोल पंप जैसे लगे रहते हैं, कार में पेट्रोल डाला जाता है। अभी ऐसा समय आ गया है कि सेंटर्स पर घरों में पंप लगाने पड़ेंगे। काय के पंप, व्यक्ति आया काम पे जा रहा है, स्कूटर पे आया, कार में आया, सर खुशी का पंप लगा दो, खुशी का पंप लगाया, गया। शाम को वापस आया, शक्ति का पंप लगा दो, शक्ति का पंप लगाया। टाइम ही नहीं है। ऐसी 21वीं सदी तेजी से चेंज हुई है, जो पिछले 2 साल में चेंज मैंने देखा, आज तक मैंने भी जीवन में नहीं देखा। इतना तेजी से आत्माओं में परिवर्तन आया है, बाहर का ही नहीं, हमारी खुद के भाई बहनों में भी इतना तेजी से परिवर्तन आया। इसलिए अभी थ्योरी का ज्ञान नहीं दें, शक्तियों का, वरदानों का ज्ञान दें। और वो तभी होगा जब हम रोज अपने को 1 घंटा मिनिमम दें, कम से कम मुरली के बाद, योग के बाद, जब समय मिले 1 घंटा खुद को दें। और उस 1 घंटे में 1 पॉइंट, 1 शक्ति, 1 गुण जो अच्छा मुझे लगता है उसको फील करूं, अनुभव करूं, कहां तक वो गुण मेरे में है, कहां उसकी कमी है और कहां मुझे उसको चेंज करना है। इसीलिए मैनेजमेंट का मेजर प्रिंसिपल रहता है इम्प्रूवमेंट के लिए, अगर किसी सेंटर को, किसी फैक्ट्री को, किसी इंडस्ट्री को आगे बढ़ना है या पर्सनल लाइफ में आगे बढ़ना है, पूरा खेल इस पे रहता है, चेक एंड चेंज। जो व्यक्ति खुद की चेकिंग नहीं करता, चेंज नहीं करता, वो वहीं का वहीं रहेगा जो 30 साल पहले ज्ञान में था। अगर हर दिन चेक करता हूं मैं, 1 पॉइंट को लेकर चेक करता हूं, उसमें चेंज लाता हूं, परिवर्तन लाता हूं, तो 6 महीने में कुछ न कुछ मेरे में परिवर्तन आएगा। बहुत ज्यादा समझ में नहीं आए, कभी कभी ये भी प्रॉब्लम आता है, कई भाई बहन कहते हैं मैं क्या करूं। फरिश्ता, एक बार एक माता आई, कहती है मैं बहुत टेंशन में हूं। मैंने कहा क्या हो गया, बोलती है मैं क्या करूं। कोई कहता फरिश्ता बन जा, कोई कहता बिंदु रूप बन जा, कोई कहता ये बन जा, मेरे को बहुत सिरदर्द हो रहा है, करूं क्या। मैंने उसको कहा कुछ मत कर, बैठ जा, कमरे में बैठ जा, रिलैक्स कर और खुद को देख। खुद की आत्मा खुद ही तुझे कहेगी तुझे क्या करना है। जैसे मैंने कहा, इस ज्ञान के मार्ग में वही आगे बढ़ता है जिसकी खुद की वैल्यूज ज्यादा है। जो खुद को वैल्यू नहीं करता वो वैल्यूलेस रहता है। और मेजर कारण व्यक्ति को डिप्रेशन आने का, मेजर कारण आज के समय में होता जा रहा है, 21वीं सदी का जो मेजर इश्यू होता जा रहा है, सुसाइड्स बढ़ते जा रहे हैं, उसका मुख्य कारण है व्यक्ति खुद की वैल्यू नहीं करता। और जब हम खुद की वैल्यू नहीं करते, कोई वैल्यू हमें नहीं देता। परमात्मा भी तभी वैल्यू देता है जब हम खुद की वैल्यू करते हैं। जो दादी गुलजार का बहुत अच्छा हमेशा हर क्लास में कराती हैं, कुछ समझ में नहीं आए, 4 पेज मुरली के समझ में ना आए, धारणा याद रखो, धारणा याद नहीं रहे वरदान याद रखो, वरदान याद नहीं रहे स्लोगन याद रखो, स्लोगन भी याद ना रहे बाबा तो याद रखो। सिंपल, जब बाबा याद रहेगा तो मैं अपनी वैल्यू खुद को दे रहा हूं। इसीलिए इस गेम को स्टार्ट करने का है तो पहले अपने को एक अच्छा सम्मान दो। मैं केवल आत्मा हूं ये वाला नहीं, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं। जब उस विचार से हम बोलेंगे, उस शक्ति को अपने में अनुभव करेंगे, तब शक्ति परमात्मा भी देता है। परमात्मा भी तब तक नहीं देता जब तक हम खुद को वैल्यू नहीं देते। तो रोज एक वैल्यू अपने को दो, और बहुत ज्यादा याद नहीं रख सकते तो एक वैल्यू अपने को दो, तो कभी डिप्रेशन नहीं आएगा, कभी नाम मान शान के चक्कर में नहीं जाएंगे। इस ज्ञान में फेल्यूअर का एक और कारण है, जब हम नाम मान शान के चक्कर में घूमना चालू हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं मैं अपने को वैल्यू नहीं दे रहा हूं। वैल्यू देंगे तो कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं। राजा एक जगह बैठकर पूरे विश्व को किरणें देता है। लास्ट कहानी देके खत्म करता हूं। एक बार बीरबल फारस के राजा के पास जा रहा था। फारस के राजा ने सोचा, बीरबल आ रहा है, बहुत इंटेलिजेंट है, इसको मैं कंफ्यूज करूं। तो राजा के महल के राज्य के बाहर बीरबल वेट कर रहा था राजा के आदेश का। फारस के राजा ने क्या किया, उसने अपने दरबार में सब दरबारियों को एक जैसा मुकुट, एक जैसी ड्रेस पहना दी, सबको एक जैसी सीट दे दी, खुद भी एक जैसी सीट पर बैठ गया। मतलब ये था कि सभी राजा जैसा दिख रहे थे, सबके मुकुट, सबकी सीट, सबकी ड्रेस एक जैसी थी। उसने सोचा जब बीरबल आएगा कंफ्यूज हो जाएगा कि असली राजा कौन है। पर जब बीरबल आया सीधे असली राजा के पास पहुंच गया और उसका अभिवादन किया। राजा ने पूछा, तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं असली राजा हूं? समय कम है, आपसे नहीं पूछ रहा हूं। उसने ये कहा, राजन आपको सब देख रहे थे और आप सबको देख रहे थे। चाहे मुकुट तो पहना दिया, ड्रेस तो पहना दी, पर अंदर का जो वैल्यू सिस्टम था वो तो नहीं था राजा का। वो तो डरा हुआ था कि राजा तो यही है। इसी तरीके से शिव बाबा ऊपर से हमें देखता है, हम उसको देखते हैं, तब हमारे में वो शक्ति इमर्ज होती जाती है और मास्टर परमात्मा बनकर हम साक्षात्कार कराएंगे। आप सभी कराएंगे, ऐसा कोई नहीं है नहीं कराएगा, पर अपने उमंग उत्साह को, खुशी को, सम्मान को कभी भी कम नहीं करना। तो लास्ट एक्सरसाइज, राइट हैंड ले लें और अपनी पीठ थपथपा दें, मेरे जैसा अच्छा कोई नहीं है, भगवान ने मुझे चुना है। जब कभी भी लगे मैं डाउन हूं, अपनी पीठ अपनी थपथपा दो, कोई नहीं थपथपाएगा, मैं तो थपथपा सकता हूं, तो कभी भी अपने में कमजोरी नहीं आएगी। ओम शांति। ये गीत भी बहुत अच्छा है, मुझे हमेशा अच्छा लगता आया है, आ हिम्मत का एक कदम। एक कदम हम खुद का उठाएं, बाकी वो उठाएगा। परमात्मा का ये शब्द, मैं हूं ना, मैं हूं ना, जब कभी भी घबराहट हो, डर हो, वो कहता है मैं हूं, घबराओ मत। दो बार ताली लेफ्ट, तीन बार राइट। भोज देते जाओ, उसको भोज दे दो। अब एक सेकंड डीप साइलेंस में पूरे विश्व को वाइब्रेशन दें, विश्व की हर आत्मा मुझ आत्मा से दुआएं ले रही है। मैं संपन्न संपूर्ण आत्मा पूरे विश्व को वाइब्रेशन दे रहा हूं। ओम शांति।
उदिता